ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रु त्वाम् अनवञ्चो वयास्महि विश्वामित्रः सुतानाः वीरवन्तो भविष्यथ ये मानं मे अनुगृह्णन्तो वीरवन्त कर्तमाम् Somebody. Sutanah. ज्येष्ठ मंत्र दृशं चक्रु ज्येष्ठां बड़े ज्येष्ठ मंत्रदृशां मंत्रदृष्टा चक्रु स्वीकार कर लिया त्वाम तुमको अनवंचो पालन करने के लिए राजी हो गए वयम हम स्म निस्संदेह ही निश्चय ही विश्वामित्र विश्वामित्र मुनि ने सुताना आज्ञाकारी पुत्रों से आह कहा वीरवंतः पुत्रों के पिता भविष्यथ भविष्य में बनो ये जो मानम मान सम्मान में मेरी अनुगृहंता स्वीकार किया वीरवंतम अच्छो अच्छे पुत्रों के पिता अकर्ता तुमने बनाया है माम मुझको। इस तरह छोटे मधुछंदो ने शुनिशेफ को अपना बड़ा भाई मान लिया और उससे कहा हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा चूंकि तुम लोगों ने शुनिशेफ को अपना बड़ा भाई मान लिया है अतएव मैं संतुष्ट हूं। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्र का पिता बना दिया है अतएव मैं तुम सबों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम भी योग्य पुत्रों के पिता बनो। तात्पर्य शील प्रभुपाद की तात्पर्य विश्वामित्र ने 100 पुत्रों में आधे ने शुनिशेफ को बड़ा भाई नहीं माना किंतु आधे ने उनके आदेश को मान लिया। अतएव पिता ने आज्ञाकारी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया अन्यथा उन्हें भी पुत्रविहीन मलेच्छ बनने का श्राप दे दिया होता। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्ताश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनसे मैं आज्ञा लेना चाहता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि वरिष्ठों के आशीर्वाद और आज्ञा के बिना कभी भी आप भागवत या भागवत छोड़ो कोई भी वस्तु आप ना तो बोल सकते हो ना कर सकते हो। दूसरे यहाँ पे जितने भी ब्रह्मचारी भाग्यवान ब्रह्मचारी बैठे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हम कार्य करते हैं रोज सुबह, भले 45 मिनट का सेशन होवे, लेकिन ये हमारा खुराक है, आध्यात्मिक खुराक। भगवान जब अवतरित होते हैं पशु रूप में तो कौन से में रूप में लेते हैं, कौन सा रूप लेते पशु रूप में, कोई बताएगा? मत्स्य? नहीं नहीं, पशु रूप में वहरा, और वो घोड़े का भी रूप लेते मालूम है, जहां वेदों का किया था। अच्छा, जल में अवतार लेते तो कौन से रूप में लेते हैं? मत्स्य, कूर्मा। ऋषि के रूप में अवतार लेते तो किसके रूप में लेते हैं? नर नारायण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में लेते हैं नाशक परशुराम। जब एक आदर्श राजा के रूप में लेते हैं तो कौन क्या बन के आते? भगवान राम। और स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान आते हैं तो बलराम कृष्ण के रूप में। वैसे ही जब भगवान शब्द रूप में पुस्तक रूप में अवतरित होते तो वो श्रीमद् भागवतम है। तो यहां का एक एक श्लोक भगवान से अलग नहीं है। और जब हम सुबह में यहां बैठते हैं, जैसे कि आज ये चर्चा आ रही है हमारी शुनि शेफम की, चार दिन पहले तक जब प्रभु जी ने बताया था शुनि शेफ के बारे में मैंने भी नहीं सुना था। लेकिन अगर भगवान ने इस पात्र को यहां पे रखा है, कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ। ये एक एक शब्द कृष्ण से संबंधित है। हर वस्तु को हम भौतिक प्रकृति के रूप से और भक्ति के रूप से देख सकते हैं। जब आप भौतिक प्रकृति के रूप से देखोगे तो तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के रूप में इस वस्तु को देखोगे। तमोगुण के रूप में आप देखोगे तमोगुण भाव से, क्या है? कुछ नहीं है, बेकार है सब। रजोगुण के भाव से देखेगा मेरा फायदा क्या होने वाला है भाई, इससे कुछ फायदा है क्या? तो देखेंगे नहीं तो क्या फायदा है, जो फायदे का काम करेंगे। सतोगुण वाला जो व्यक्ति है जब ये देखता है तो बोलता है इसमें मेरे को थोड़ा तप सीखने को मिलेगा, थोड़ा मेरे को उपकार करने को मिलेगा, कुछ मेरे भाव बदली हुए। लेकिन जो शुद्ध सत्वगुण भक्त जब इसमें देखते हैं तो कृष्ण देखता है कि इस श्लोक में कृष्ण ये शब्द क्यों लाए हैं। तात्पर्य चार लाइन का है, लेकिन ये जो प्रसंग है भले चार लाइन का या चार श्लोक का, कुछ ना कुछ कृष्ण का कारण होगा। कृष्ण ने जब ये भागवतम में रखा है तो ये सुनिशेफ विश्वामित्र सौ पुत्र आधे जन ने भाई मना कर दिया, आधे जन मान लिए जो आज का हमारा श्लोक है। तो हमको क्या लेना देना इससे? क्या भाई हमारी यही बात है कि हमें जब इधर आवे तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी ये भक्ति बढ़ाने में यह सहायक कैसे है। तो मेरे को पहले ही बोला गया था कि भाई 9 बजे क्लास खत्म कर देना। हाँ, तो भाई आधे घंटे में हम जो भी कृष्ण चर्चा होगी वो प्रयास करेंगे कि कैसे ये श्लोक, क्योंकि हर श्लोक में कृष्ण है और हर श्लोक में कृष्ण कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं। ऐसा एक भी अंग नहीं है जो कृष्ण से अलग है। हां, लेकिन कृष्ण हमें जब ये देना चाहते हैं ये श्लोक, उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों वस्तु का हमें मेल करना सिखाते हैं। इसमें भक्ति रस, ज्ञान रस, तत्व लीला रस, ये सब भरा हुआ है। उसे प्रयास करना, जितने भाव से हम भागवत को, जितने भाव से हम भक्तों को समर्पण होगे उतना ये हमें प्रकाश करता है। भागवत अंदर से प्रकाश करता है। मद चित्ता मदगत्ता प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति रमन्ति च। अब ये विश्वामित्र का ये प्रसंग डाल के और भगवान स्पष्ट बताते, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। हमें तत्व रूप में जानने का प्रयास करना है कि ये हमको प्रभुपाद, हम सब प्रभुपाद के सैनिक हैं। आप सब इतना ध्यान रखो, बहुत भाग्यशाली सैनिक हो। और हमारा लड़ाई माया से रोज होता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति ममे वांश जीव लोके। हमारा रोज लड़ाई हो रही है। और जैसे एक योद्धा जब जाता है तो अपना कवच, अपने अस्त्र, अपने शस्त्र लेके जाता है, तो ये भागवतम ये रोज हमारा एक पोषक बनता है, आध्यात्मिक पोषक बनता है, हमारी रुचि बढ़ाता है, हमारे अंदर के कुछ अवगुण हैं उसको प्रकाश में लाता है। तो लास्ट दो दिन से मैं भी कथा सुन रहा था, जैसे प्रभु जी परसों किए थे ये कथा सुनिशेफम की, तो और कल वो हरिनाम पे चर्चा हो गई कि हरिनाम कैसे मलेच्छों का उद्धार हरिनाम पे होता है। तो मुझे भी आपसे जानना है कि आपने जो सुनिशेफ की कथा या विश्वामित्र की जो कथा सुनी, क्या जाना आपने, कुछ भी क्या प्रसंग था, किसको याद है? यस, क्योंकि ये अभी आधा घंटा है, हम कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण।
हाँ,
तो विश्वामित्र जो उनके पुत्रों को कहा कि इसको सुनिशेफ को बड़ा भाई के रूप में स्वीकार करे,
हाँ,
तब जो लोग मना कर दिया उनसे अप्रसन्न हुए और उनका पतन हुआ, उनको मलेच्छ बनने का शाप दिया। लेकिन जिन्होंने उनका आदेश का पालन किया उनका कल्याण हो गया।
लेकिन ये सुनिशेफ पात्र की कथा जो आती है वो तो कहां आती है? हरिश्चंद्र, ये ऐत्रीय ब्राह्मण ऋषि के इतिहास में आती है। ये कहां आती है?
उसमें कहा गया, और जैसे प्रभु जी ने बताया रामायण में भी आती है, लेकिन हम जहां तक अभी इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जो हमारी भक्ति के लिए हमको वर्धक है, जो तत्व हमको वर्धक बनाती है उस विषय में, क्योंकि ये कथा से नारद जी का कनेक्शन है, ये कथा से वरुण देव का कनेक्शन है, ये कथा से इंद्रदेव का कनेक्शन है। तो ऐसा क्या है कि भाई नारद जी ने बोला, नारद जी भी बोल सकते थे कि आप भगवान की सेवा करो, भगवान का भजन करो, तो उन्होंने वरुण देव के पास क्यों भेजा? नारद जी तो शुद्ध भक्त है, फिर उन्होंने वरुण देव को क्यों कहा? अच्छा, वरुण देव को कहने के बाद वो भी तो भक्त है, हम देखते हैं कि वो भी देवता है, तो ऐसी क्यों कंडीशन रख दी कि भाई हम आपको पुत्र देंगे लेकिन वो पुत्र फिर ले लेंगे, पुत्र ले लेंगे, और उस जमाने में यज्ञ होते थे, यज्ञ के रूप में लेंगे हम, और फिर इंद्रदेव क्यों आए रोकने के लिए रोहिताक्ष को? 6-6 साल तक उसको रोक के रखा, और यहां पे उनके पिता को ये हो गया, पेट की बीमारी हो गई। तो ये क्या है? भगवान उस समय भी उनके हृदय में थे, और ये प्रसंगों के द्वारा कुछ ना कुछ तत्व है, रस है, जो हमको संदेश देना चाहते हैं। वो तत्व क्या है उसे जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये शुनिशेफम को देवरात कहा गया है। क्या कहा गया है? देवरात। जबकि उनके जो पिता है अजिता, उनके 3 पुत्र थे। तो ऐसा क्या हुआ कि पहला पुत्र को तो बोलते उनसे प्रेम था, माता को छोटे पुत्र से प्रेम था, तो बड़ा बीच वाला पुत्र भी बोल सकता था मुझे नहीं जाना है, लेकिन वो क्यों चला गया? क्योंकि यहां पे लिखा गया है श्लोक में, वो धर्मपरायण तपस्वी था, एडवांस स्पिरिचुअल। क्या लिखा गया है वो? तो जो भी एडवांस स्पिरिचुअल रहता है वो परहित पर दुख दुखी रहता है। क्या रहता है वो? वैष्णव का एक गुण है पर दुखी दुखी। और यह भी हमें संदेश मिलता है, अगर आप धर्म पे टिके रहते हो, धर्म का पालन करते हो, धर्म आपकी रक्षा करती है। शुनिशेव अपने धर्म पे टिका रहा। शुनिशेफम ने कभी मना नहीं किया। उसके पिता दारिद्र थे लेकिन लोभी भी थे। क्या थे? तो कभी कभी हमारे सीनियर गड़बड़ वाला भी हो सकता है, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ वाला है हम नहीं करेंगे। कृष्ण ने रखा है उसे, हम कृष्ण के दास के दास हैं, तो हमें हमारे धर्म पे चलना है। तो शुनिशेफम जो पात्र है वो बताना चाहता है कि कैसे वो अपने धर्म पे टका रहा और कैसे देवताओं ने उसकी रक्षा की। और यही बात भीष्म पिता ने युधिष्ठिर महाराज को भी कहा, जब शैया पे बैठे थे, एक इंच एक एक तीर का जाने का रास्ता नहीं था, इतना इतना खून बह गया था, दिनों दिनों तक प्यासे थे, मगर जब युधिष्ठिर महाराज वहां आए तो उन्होंने भी वो पर दुखी दुखी का भाव बताया। उन्होंने अपना दुख नहीं रोया, उन्होंने अपना युधिष्ठिर महाराज का दुख देखा कि आपने पूरे जीवन कैसे दुख झेला, सिर्फ धर्मपरायण, लेकिन फिर भी अच्युत्य ब्राह्मण और वैष्णव भगवान की कृपा से आपकी रक्षा हुई, क्योंकि आप हमेशा अपने धर्म पे टिके थे। उन्होंने वचन लेके रखा था कि मैं कभी भी वरिष्ठों के आगे नहीं जाऊं। तो हमें देखने को मिलता है, वैसे ही हम देखते हैं जड़ भरत महाराज की कथा, वो जरा उच्च स्तर की कथा है कि उन्होंने भी सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दिया था। और उन्होंने तीन जन्म का अनुभव कर लिया था, राजा का अनुभव और हिरण का अनुभव कर लिया था, और अभी यह जन्म में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप कर रहे थे और मूंगे बन गए थे। जो जैसा करवा था वैसे करते थे, कभी भी कुछ ये नहीं किया। बोला खेत में जाओ तो खेत में चले जाते थे, और खेत में वो बलि लेने लाए, वो आए उनको उठा के गए, चलो बलि के लिए जब उनको खड़ा कर दिया गया तब भी उन्होंने वो नहीं किया, तब भी उनका स्मरण चल रहा था। मगर तब माता काली प्रकट हो गई, बोला ये हम नहीं कर सकते। उस भक्त के कारण उन सभी पाप का उद्धार हो गया, माता काली ने आके उनका उद्धार कर दिया। तो एक भक्त के संपर्क में आकर कैसे दूसरों का उद्धार हो जाता है, हमें हमारे जगह पे दृढ़ रहना है। और जो आज का श्लोक है इसमें जैसे हर वस्तु, जैसे अभी ज्येष्ठ मंत्र दशम, तो ये श्लोक में हमें क्या जानने को मिलता है कि जो भक्ति में ज्येष्ठ है, भक्ति में सरेंडर है, उनसे मंत्रणा करो। क्या करो? उनसे उनसे मंत्रणा सीखो। और यहां पे हमें सरेंडर वैल्यू सिखाया जाता है ये श्लोक में। और सरेंडर का शब्द क्या है यहां पे, जो क्या अवनंचो, वनंचो जो है अवनंचो, इसका अर्थ क्या लिखा गया है, पालन करने के लिए राजी है हम। क्या है? हम जो आप कहेंगे वो पालन करने के लिए राजी है। ये होता है सतोगुण, ये होता है भक्ति में आगे बढ़ने का एक पात्र। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्व दर्शन। अगर भक्ति में आपको आगे बढ़ना है, सेवा में आगे बढ़ना, ये गुण होना बहुत जरूरी है। आप जो कहेंगे वो मैं पालन करने को राजी हूं, ज्येष्ठों से, ना के आर्ग्यूमेंट करना। क्योंकि आप जब उस भाव से रहोगे, कृष्ण आपकी रक्षा करेगा। यह हमेशा ध्यान रखना है आपको। और दूसरा यहां पे शब्द दिया गया है वीरवंतो। अभी वीरवंतों का भी अर्थ बहुत सारा हो सकता है। वो तामसी जो लोग रहेगा, वो जब वीर देखेगा तो बोलेगा जो ज्यादा पीता है ना वो वीर है, जो ज्यादा लड़कियों के साथ घूमता है ना वो वीर है, जो ज्यादा जुआ खेलता है वो वीर है, या जो चीटिंग करके जीता है वो वीर है, हा? जो ज्यादा पार्टी करता है वो वीर है। रजोगुण वाला क्या बोलेगा वीर का शब्द देख के? रजोगुण वाला बोलेगा जो ज्यादा पैसा धंधा करता है वो वीर है, जो ज्यादा मतलब पावर दिखाता है, जो ज्यादा प्रेस्टीज दिखाता है वो वीर है। हा? पावर, प्रेस्टीज, मनी, उसको हम वीर कहेंगे। अपना अहंकार दिखाता है वो वीर है। रजोगुण वाला धंधा कमाता है ना, पैसा कमाता है तो वीर है। सतोगुण वाला क्या इस शब्द को देखेगा तो बोलेगा वीरवंत। वो बोलेगा वीर, वीर वही है जो तपस्या करता है, वीर वही है जो अपने इंद्रियों को संयम, वीर वही है जो अपने वीर्य को रक्षण करता है। लेकिन भक्त जब देखता है तो वीर किसे मानता है? वीरवंत। वो भक्त वो जानता है कि वीर वही है जो अपने शरीर, अपने मन, अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में, वैष्णव की सेवा में और उनके आज्ञा के अनुसार जो जीवन जीता है वो वीरवंत है। तो हमें यहां पे सीखना है कि अगर हमें कौन सा टाइप का वीर बनना है। और यहां पे जो आशीर्वाद दे रहे हैं कौन? विश्वामित्र। तो जब वरिष्ठ प्रसन्न हो गए सेवा से तो आशीर्वाद मिलेगा। देखो हम चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में हैं और चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं अपने आचरण से कि कैसे नम्र रहना है और कैसे रहना है। वो जब मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जब ये आत्माराम श्लोक का वर्णन हुआ सार्वभौम, तो एक ही श्लोक का उन्होंने कितना अर्थ दे दिया, 64 अर्थ दे दिया। लेकिन जब सनातन गोस्वामी पूछने गए तो चैतन्य महाप्रभु को मेरे को याद नहीं है, वो उस दिन पागल की तरह मैं बोल दिया। हाँ, लेकिन अगर आपका एसोसिएशन रहेगा, आपका संग रहेगा, तो मुझे कुछ भाव आ जाएगा। तो यहां पे हमें यह समझना है इस श्लोक के द्वारा कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। अगर आप में, और दूसरा यहां पे बात यह है, विश्वामित्र जानते थे उनके हित क्या है उनके पुत्र के लिए। हित वही है कि एक वरिष्ठ जो आध्यात्मिक रूप से आगे है, सरेंडर्ड है, जिस पर ऑलरेडी कृपा है, उसके मार्गदर्शन में रहेंगे तो इनका भी भला होगा। तो वैसे ही हमें भी ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो हमेशा भक्ति में आगे है। दूसरा बात जो यहां पे हमें समझने को मिलता है कि ये जो 50 भक्त जो 50 थे वो क्यों नहीं सरेंडर हुए, तो ये हमें सीखने को मिलता है कि जब भी आप में अहंकार रहेगा, अहम भाव रहेगा, आप कभी भी सरेंडर नहीं करोगे। और एक प्रसंग आता है शास्त्र में कि पिता की आज्ञा को मना कब किया जाता है। 10,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के किधर भेजे उनको, तपस्या करने के लिए। फिर क्या हुआ, नारद मुनि आ गए, क्या किया उन्होंने, भाई आप भगवान की सेवा में लग जाओ। तो उन्होंने उस ऊंची आज्ञा को मान के पिता की आज्ञा को मना कर दिया और आगे निकल गए। दक्ष प्रजापति, चलो ठीक है, चलेगा इस टाइम पे। दूसरी बार भी 10,000 लोगों को भेजा, क्या किया, वही वस्तु किया, और उस टाइम पे क्रुद्ध हुए। तो ये जो क्रुद्ध का भाव है, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि क्रोध क्यों आता है। ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामाद क्रोध अभिजायत, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति ब्रह्मशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध तब होता है जब आप अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छाओं का। लेकिन भक्त को इतना ध्यान रखना, भक्त को उनकी इच्छा, वरिष्ठों की इच्छा, वैष्णवों की इच्छा, गुरु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। और क्रोध आता है तो उसे भी बताया गया कि कैसे उसे उतारना है, कभी भी भक्तों पे नहीं उतारना है क्रोध। हनुमान जी ने अपना क्रोध बंदरों पे नहीं उतारा था, किधर उतारा था, लंका पे उतारा था। तो हम भी लड़ाई करते हैं रोज, हम मायावादी हैं, हम भौतिकवादियों से लड़ाई करते, वहां पे अपना क्रोध उतारो कि आप भक्तों भक्त बनो, भगवान की सेवा में लगो, क्या कर रहे हो आप, ना के हम हमारे सर्कल में दोष वृत्ति देखे, क्योंकि हमारी इंद्रियों के अनुसार काम नहीं हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, यहां पे स्वामी राधारास बिहारी है, उनकी इच्छा से सब चलता है, निमित्त मात्रे न सव्यसाची, हम और आप सब निमित्त है, उसे जो करना हो करके रहते हैं। और जो कहता है कि मैं डायरेक्ट राधा रास बिहारी का भक्त हूं, वो भक्त नहीं। जो दास का दास है वो वास्तव में भक्त है। इसीलिए हमें जो भगवान के सेवा में लगे उनकी सेवा में लगो, तब आशीर्वाद मिलेगा। और यही बात हमें मिलती है यहां पे सीखने को। हर श्लोक में कुछ ना कुछ हमारे लिए संदेश है। मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन और भी गहराई हो सकती है। और वो उतना ही समर्पण जितना आपका भाव रहेगा उस हिसाब से ये श्लोक ये भागवत आपको रिवील करते हैं। इंद्र जब रोका किसको, शुनेशेफ को, तो क्यों रोका? और उन्होंने रास्ता भी बताया था कि भाई ये एक्सचेंज कर लेना। 6 वर्ष तो तक इंद्र ने रोका था उन्हें। तो हमें बहुत बार भागवतम में दिखता है इंद्रजीव का क्या क्या कार्य रहता है। जैसे ये अपना गोवर्धन लीला के इंद्रदेव का काम क्या था, पूरे इसको डुबा देने का। सबसे बड़ा वैष्णव अपराध किया उसने। क्या किया उसने? एक पूजा नहीं की है तो पूरे पूरे वैष्णव समाज को क्या करने को चला था, वो खत्म करने को चला था। उधर कंस तो खाली एक को ही भेजता था, लेकिन यहां तो ये क्या कर रहा था, इंद्र भेजते ही जा रहा था। और पूरे संयंत तक मणि पूरा का पूरा साफ कर दो वृंदावन। तो क्या ये वृंदा ये मालूम नहीं था? और भगवान ने ऐसे अलाउड क्यों किया? क्या ये सब जीव को त्रिकालदर्शी नहीं है क्या, कि भविष्य में क्या होने वाला है नहीं मालूम है क्या? सब मालूम है। तो फिर ऐसे रोल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पात्र दिया जाता है, कुछ ना कुछ। जब बोलते ना एक स्टोरी बनाते तो एक को विलन बनाना पड़ता है और एक को। एक बार क्या हुआ, हकीकत बटना बताता हूं ये पात्र के बारे में। अफ्रीका में अभी नरसिंह ये अपना आता है ना नरसिंह, तो इसमें इसके साथ युद्ध हुआ। किसके साथ? नहीं, चाणूर मुष्टिक का, सॉरी, चाणूर मुष्टिक का कथा चल रहा था। तो ड्रामा हुआ, तो जो कृष्ण बना था वो बेचारा हल्का फुल्का ब्रह्मचारी बना था, और जो चाणूर बना था वो अफ्रीकन हट्टा कट्टा था। क्या था? वो भी भक्त था, लेकिन ऐसा हो गया कि रोल था कि भाई वो उसको एक थोड़ा मल्ल युद्ध करना है और हार जाना है। लेकिन जब एक्चुअल जब कथा सीन चालू हुआ तो देखा कि ये चाणूर कृष्ण पे क्या पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, और कृष्ण दब गया। तो वो बोलता है कि मेरे को चाणूर का, भक्त बोलता है मेरे को चाणूर का रोल दिया है तो मैं चाणूर बनूंगा ना है? और वो बेचारा वो धक्का मार रहा है किसको, लेकिन वो हिली ने उसको पलट के क्या करना था। दोनों भक्त है लेकिन क्या है, अपना अपना रोल कर रहे। फिर किसी ने बोला, अरे भाई पलटी हो जा। तो यहां पे हम देखते हैं कि इंद्र वरुण ये सब किसी ना किसी कारण कृष्ण की योजना से कोई ना कोई भाग कर रहे हैं। अगर वो गोवर्धन लीला नहीं होती तो कहां से आज परिक्रमा, वो ही एक जगह है जहां पे समस्त वृंदावनों का चरण है। उसके अंदर जितने भी वृंदावन से गाय है ये है, उनकी परिक्रमा करने का लाभ और यज्ञ बोलते हैं कि राजसु यज्ञ करने का लाभ मिल जाता है सिर्फ एक परिक्रमा करने से। अगर इंद्र ने ये सब नहीं किया होता तो अंदर आते थे? भविष्य का भगवान भविष्य का विचार करते हैं, हमें उस समय नहीं मालूम पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ भविष्य में योजना रहती है भगवान की। यही भीष्म पितामह भी बताया कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कृष्ण ही आप ऐसा क्यों करवाते हो, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य आपकी भविष्य में योजना होगी कि इतने भक्तों को आप कष्ट क्यों देते हो, क्या कारण है जो इतने सरेंडर है फिर भी उनको दो दो बार वनवास, इतना कैसे करते आप, क्यों करते हो? तो भगवान बताना चाहते हैं कि भक्त रहता है उसके गुण क्या है, भगवान स्वयं बताते, समह शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो शीतो उष्णो सुख दुखेशु समह संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरह। ये प्रिय है मेरा, जो मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख में सम है वो मेरा प्रिय है। और इसी को प्रूफ करने के लिए भक्तों को टेस्ट में डालता है, भक्तों को संजोगों में डालता है। और वरुण देव ये जो रोल करते हैं ये बताना चाहते हैं कि देवताओं के पास जाएगा तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जितना दिया उससे ज्यादा देना भी पड़ेगा। लेकिन कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपशनम अश्नामी प्रयतात्मना। मुझे तुम पत्र पुष्प फूल अपनी शक्ति के अनुसार दे दोगे मैं आपका हो जाता हूं। एक चावल का दाना दिया द्रौपदी मैया ने अक्षय पात्र में से, समस्त ये जो आए थे, कौन आए थे, दुर्वासा और उसके 10,000 से पेट भर गया एक दाना देने से। कहते हैं एक बार भगवान को कुछ लगा था तो द्रौपदी ने बांध दिया था कुछ वस्त्र, उस वस्त्र का इतना वस्त्र दे दिया, इतना वस्त्र दे दिया कि 10,000 हाथी वाला दुशासन खींचते 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 थक गया, मगर फिर भी वो फैक्ट्री बंद नहीं, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है नहीं मालूम पड़ा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर कृष्ण की कुछ ना कुछ सर्व कारण कारणम, भगवान सर्व कारण के कारण है। और जब तक हम कृष्ण की दृष्टि से नहीं देखेंगे हमें जीव को संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदय सर्व भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। अगर हमें शांति चाहिए हमें कृष्ण की दृष्टि से देखना है कि कृष्ण क्यों करवा रहे हैं, हर लीला के पीछे कृष्ण को कुछ कारण है और हमारे लिए कुछ संदेश है। हमें भी वीरवंत बनना है, हमें भी ज्येष्ठों से मंत्र दर्शन करना है। और यहां पे यह भी कहा गया है कि आपने मेरी आज्ञा का पालन करके आपने वीरवंत हो गए, क्या हो गए, वीरों का पालन, वीर के जैसा पालन किया। क्योंकि सरेंडर होना ये खाने का काम नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम आता है ईगो, ईगो सबसे लास्ट में जाता है। हमें देखते हैं दक्ष प्रजापति कैसे है, ईगो के कारण वैष्णव अपराध कर दिया, किसका, शिव जी का। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे 5-10 मिनट। किसी का कोई प्रश्न है कुछ है इस संबंध में तो पूछ सकता है।
थैंक यू वेरी मच फॉर द रिफ्रेशिंग क्लास। आगे के 4-5 श्लोक के बाद आता है कि जो धन्वंतरी भगवान है वो लिनियज में आते हैं।
धन्वंतरी भगवान
का रेफरेंस आता है, उसमें बोलते हैं कि उसका नाम स्मरण करने से सब रोग गायब हो जाते हैं। तो आपने जैसे बोला कि भगवत में जो भी लिखा है वो कृष्ण का ही लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ देखा जाए तो हर एक व्यक्ति बीमार है, चाहे नियोफाइट डिवोटी हो या इनिशिएटिंग मास्टर हो, हर एक के बदन में एक से लेके एक डजन तक रोग है। तो हम उसका नाम स्मरण करेंगे तो एक तरह की मेडिसिन हो जाएगी, रेमेडी हो जाएगी, तो ऐसा हम क्यों नहीं करते?
प्रभु जी, ये जो शास्त्र है ये जब तक गुरु साधु और वैष्णव की शरण में नहीं आएंगे तब तक उसके वास्तविक भावार्थ का समझ में नहीं आएगा। खाली लिटरली कोई वस्तु पढ़ने से कभी भी आपको कुछ वस्तु समझ में नहीं आएगी। अगर ये कहा है तो ये सत्य भी हो सकता है, सत्य हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे गुरु का आशीर्वाद, वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? और दूसरी बात, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, समय। ऐसा नहीं कि आज मैं अगर मैं आज बीज बो दूं तो मेरे को कल फल चाहिए, वो गति चालू हो जाती है, प्रोसेस चालू हो जाता है। अगर शास्त्र में कहा है तो उस दिन से उसका रोग मिटने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? चालू। लेकिन वो कब खत्म होगा वो कृष्ण जानता है। दूसरा, मैं जब से बोला हूं कि जब तक भक्त का हृदय में भक्त से ये निकलता नहीं है, ये कि भाई अगर भक्त भगवान बोलते हैं कि मेरे हे अर्जुन आप घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होने वाला, खुद भी तो घोषणा कर सकते थे कि मैं घोषणा करता हूं मेरे भक्तों का, अर्जुन के द्वारा क्यों घोषणा करवा रहे? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं एक बार बोल देता हूं तो उसका चेंज करने का चांसेस है, मगर कोई अगर भक्त बोल देता है, आशीर्वाद दे देता है तो मैं उसका पालन करना मुझे अवश्य हो जाता है। तो अगर भक्त के रूप में अगर कोई ये आपको आशीर्वाद देके बोलता है तो अवश्य। मैं आपको बता दूं, ये जो चरणामृत है, यहां पे जो पानी जो यहां पे आता है, कहते हैं कि जो भक्तों का जो चरण है, झूठा चरण, उसको ये जो महाप्रसाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भक्ति में तीन बल है, भक्त चरण धूल, भक्त अवशेष और भक्त भुक्त है? तो ये जो है ये महाबल है, भक्ति बढ़ाती है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको कैंसर था। मैं बोला भाई साहब हमने सुना है ऐसा शास्त्र में कि भाई ये भक्तों का महाबल देने से कुछ ना कुछ फायदा होता है, ये चरणा में तो लेके गई, आप मानेंगे नहीं, उनको क्योर हुआ। कौन सा पानी? जो हम लोग यहां फेंक देते, अब भक्तों का पानी हमको नहीं मालूम, लेकिन शास्त्र में शक्ति है कि भक्तों का जो झूठन है, भक्तों का अवशेष है, उसमें शक्ति है, लेकिन वो भक्त का आशीर्वाद भी रहना चाहिए उसमें। क्या रहना चाहिए? हाँ, कोई कल बोलेगा कल मैं खुल रोज पी लूंगा और भक्तों का आशीर्वाद नहीं है तो कुछ काम करने वाला नहीं है। भक्त अपने हृदय की बात संचारित करता है, भगवान उसकी रक्षा, उस शब्द की रक्षा करता है। क्या करता है भगवान? शब्द की रक्षा करता है।
थैंक यू वेरी मच।
यस,
हरे कृष्ण। कैन आई एड समथिंग?
यस प्रभु जी।
तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया। रही बात प्रभु जी की, जिन्होंने प्रश्न पूछा, उनका जो प्रश्न था कि धन्वंतरी का नाम लेने से हमारे रोग क्यों नहीं ठीक होते या हम क्यों नहीं लेते, और आपने कहा था कि भागवतम में जो भी लिखा है वो सत्य है, बराबर यही प्रश्न है। तो और आपने ये भी कहा कि चरणामृत अगर भक्त के आशीर्वाद से लेंगे तो ठीक हो गया है और होगा भी, तो वही धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद भी दिया है, वो उसी लिए दिया है जिन लोगों का हरिनाम में पूरा विश्वास नहीं है और वो उतना श्रद्धा से हरिनाम नहीं ले सकते या भगवान धन्वंतरी का नाम नहीं ले सकते, तो वो लोग आयुर्वेद का भी फायदा लेकर के उपयोग, जो प्रिस्क्रिप्शन बताए है, दवाई बताई है, वो सब प्रैक्टिकल स्टेप्स मेजर्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अभी हरिनाम ले रहे तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा 100% विश्वास नहीं है।
हाँ।
हम केवल एक नाम अक्षर का उच्चारण कर रहे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन हम सही रूप से भगवान का आश्रय नहीं ले रहे, जैसे अजामिल ने आश्रय लिया था, जैसे महान संत आश्रय लेते, उस हिसाब से हम आश्रय नहीं लेते तो उसका परिणाम नहीं होगा, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें बाकी सारे शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद वगैरह वैद्यकीय शास्त्र दिया है, उसके हिसाब से हमें दवाई भी लेना होता है। ये प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक, ये उसका सुझाव खुद धन्वंतरी भगवान ने दिया है। और रही बात कि भागवतम में यह सब बताया है, भागवतम सत्य है, फिर हमको ऐसा क्यों दिखता है, सब इनेबिलिटीज, इतने सारे गलतियां क्यों दिखते हैं, फिर हम क्यों, जैसे प्रभु जी का अक्षय तृतीया के दिन भी प्रश्न था कि भागवतम में इतना संघर्ष बताया, इतना ये बताया, इतना वो बताया। भागवतम चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं अमल पुराण, और हमको इसमें गलती दिख रहा है, तो कौन सही है? महाप्रभु सही है कि हम सही है? महाप्रभु सही है। तो हमको ये दिखता है क्योंकि हमने वैसा चश्मा पहना है। तो अगर हम किसी वैष्णव का आशीर्वाद लेकर के, जैसा अभी आपने बताया, उस वैष्णव की सेवा से, उनके अध्याय, उनके दृष्टिकोण से देखें, तो हमें भागवत सही रूप से कृष्ण के रूप में दिखाई देगा। और जब तक हमें वो श्रद्धा पूर्ण रूपे में विकसित नहीं होती, तब तक हमें वही भक्तों के मार्गदर्शन में व्यवहारिक सुझाव भी लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी केवल चरणामृत लेके हमारी सारी,
जैसे आज के श्लोक में है ज्येष्ठ मंत्र दर्शन, मतलब ज्येष्ठों से हमें मंत्र दर्शन लेना
वो लेना ही है। और ऐसा नहीं कि फिर वो तो फिर तांत्रिक जैसा हो गया कि आप चरणामृत ले लो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप ये ले लो ये हो जाएगा। हमें जो व्यवहारिक सुझाव है डे टू डे लाइफ के, वो सब करने हैं वही गुरुओं के मार्गदर्शन में, प्रैक्टिकल होके।
इमरजेंसी में ये सब चीज ठीक है, जहां पे आप सब कार्य फेल हो जाते हैं और सिर्फ अभी कृष्ण का कृपा रह जाता है और भक्तों का, तब जाके ये बोलते ना, इसको बोलते हैं राम बाण, क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र।
तो इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि हर दवाई लेते समय भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए।
बिल्कुल,
तो दोनों साथ में जाना चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और हरि नाम भी।
बिल्कुल,
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? 5 मिनट और बाकी है, मेरे को 9:05 को बोला था, क्योंकि मेरे को आपसे कुछ प्रेरणा चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ है भाई, हम घर में बाहर जाते हैं, हमको रोज लड़ाई करना पड़ता है, आप लोग यहाँ पे है, आपसे प्रेरणा लेके हम जाते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु।
यस प्रभु,
आपने बताया जैसे जो ज्येष्ठ सोना सेब थे,
हाँ,
तो उनके अंदर अहम बना रहा, जो कि बाकी जो 50 थे तो उनके अंदर अहम खत्म हो गया, जबकि उन सभी का ट्रेनिंग तो एक ही जैसा हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ और फिर ये अहम भाव कैसे खत्म?
आपका
किया
कहना ये है कि एक में अहम था, एक में नहीं था, इसका कारण क्या? ये पूर्व कर्मों का हिसाब किताब होता है। क्या होता है? पूर्व कर्मों के संस्कार भी होते हैं। हर जीव का अपना एक हिसाब किताब बोझा लेके लेके आता है, और भगवान की, मतलब भगवान बताते हैं कि कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन फल किस समय किस टाइम देने का है वो मैं डिसाइड करता हूं। तो हमारे अंदर का अनर्थ कब प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से कुछ ना कुछ तो अनर्थ है। प्रभुपाद हमेशा बताते ये एक हॉस्पिटल है, क्या है, और हमारे अंदर बीमारी है, किधर, इधर है, इधर बीमारी है, काम क्रोध लोभ मद मोह। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, एक आदमी टांग ऊपर करके खड़ा रहता है, एक आदमी गैस छोड़ते रहता है, एक आदमी खांसते रहता है, खा खा खा, तो खांसने वाला बोलेगा क्यों गैस छोड़ रहा है, जो गैस छोड़ने वाला क्यों टांग ऊपर करके रखा है तू, तो चलेगा क्या? अरे भाई तू भी बीमार है, मैं भी बीमार है, बीमारी थोड़ी अलग अलग है, क्या है? तो उसी तरह से जब उस कर्मों को प्रकट करना है, वो अनर्थ प्रकट हो गए, क्या अनर्थ? उनके ईगो अभी तक गया नहीं, तो ये पूर्व कर्मों के संस्कार के कारण होता है। लेकिन ये पूर्व संस्कार शुद्ध भक्तों के संग में, मेन बात ये समझना है कि शुद्ध भक्तों के संग में भागवत सेवा करने से, मॉर्निंग प्रोग्राम बराबर करने से, एक एक ऊंचा उद्देश्य लेने से वो हमारा अहम नाश हो सकता है। हमारा हृदय करुणा से भरना है, हमें जीव दुखी है बार उस हृदय से हमें सेवा करनी है। जब आप पर दुखी दुखी बनोगे तब भगवान आपके हृदय के अंदर के अनर्थ भी दूर करेंगे। तो ये जो अनर्थ है ये हमारे संस्कारों पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण आते हैं और वो प्रकट होते कोई ना कोई प्रसंग के कारण। जो धंधे वाला रहता है ना वो मंदिर में भी आके धंधे की बात करेगा, क्योंकि मैं देखा हूं सिंधी लोग दिमाग लड़ा दे पैसा 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 पैसा, मतलब जो पूर्व संस्कार है आने के बाद भी वो मिश्रित रूप से भक्ति करते रहते हैं। जो संस्कार है वो इतने जल्दी आज हम जितने भी कर रहे हैं वो मिश्रा भक्ति कर रहे हैं। कपिल भगवान बताते हैं मिश्रित भक्ति में तमोगुणी भक्ति रजोगुणी भक्ति सतोगुणी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मैं बोला ना हॉस्पिटल है दवाई लेते रहो। प्रभुपाद हमारे बॉस है और यहां हमारे बॉस बैठे हैं, रोते धोते रहो इनके पास, कुछ ना कुछ भला हो जाएगा हमारा। हम तो भाई रोज रोते हैं कि भाई करो कुछ, क्योंकि दोषों का सागर है। कभी कब अभी दिखता इधर है लेकिन कभी वो प्रसंग आ जाता है और वो गुण आ जाते हैं। जैसे है अच्छे थे लेकिन वो ईगो आ गया, हम क्यों क्या आ गया। तो ये पूर्व संस्कार क्या थे, ये पूर्व जन्म के संस्कार। ओके और कोई प्रश्न? 5 मिनट हो गया प्रभु, अभी और 5 मिनट कंटिन्यू करना है कि ये प्रश्न लास्ट लेंगे? ले लूं आपकी आज्ञा हुए तो, क्योंकि प्रसाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ बोलिए प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ
कल एक व्यक्ति मिले और वो कहने लगे हम वृंदावन से आए हैं।
हाँ
और हमने देखे ऐसे भक्त जो पेड़ की छाया में बैठे पूर्ण शरणागति लिए हुए हैं।
क्या
पूर्ण शरणागति लिए हुए हैं, पेड़ की छाया में बैठे वृंदावन भगवान का भजन कर रहे हैं।
आप कैसे बोल सकते हैं कि पूर्ण शरणागति लिए है?
वो कह रहे थे हमने कुछ दिन समय बिताया वहां पर।
नहीं नहीं वो देखो कभी भी पूर्ण शरणागति का सर्टिफिकेट कोई खुद नहीं देता है।
और
कभी भी कोई नहीं देगा। चैतन्य महाप्रभु को देते, बोलते हैं कि भाई कब ऐसा समय आएगा, नहीं नम गलत अश्रुधाराया गद गद बद्ध अरुदा, ऐसा कब समय आएगा। चैतन्य महाप्रभु हमें बताते कि भक्त का स्वभाव क्या होता है। माधवेंद्र पुरी मरते जब वो जब बेड में थे स्थिति क्या थी तब भी वो बोल रहे थे हे कृष्ण। उस टाइम पे एक उनका एक शिष्य आया, अरे आप ये ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो, हाँ आप ध्यान करो ये करो, उनको लेक्चर दे रहा है। बोलते आप ऐसा भावुक मत हो। माधवेंद्रपुर ने भगा दिया उन्हें। का नाम क्या था, रामचंद्र खान, रामचंद्रपुरी। तो हमें ध्यान रखना है, आप खुद सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप पेपर लिख के आप चेक करोगे अपना कि मैं शुद्ध भक्त हूं। तो यही फर्स्ट लाइन पे हमें समाप्त कर देना चाहिए कि मैं पूर्ण शरणागति हूं, यही बोगस है। हाँ यस वरिष्ठ भक्त आप अभी 10 हो गया प्रभु जी, ले सकते हैं प्रश्न।
एक जिज्ञासा है।
हाँ यस प्रभु जी।
जो ऋचिक ऋषि थे,
हाँ
अपनी सास और पत्नी के लिए खीर बनाए थे,
हाँ
तो जो उनकी पत्नी सत्यवती खीर खाई,
हाँ
तो उसे तो जबदग्नि जी का जन्म हुआ,
हाँ
और उनकी सास जो खीर खाई थी,
हाँ
उससे किसका जन्म हुआ?
नहीं प्रभु नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पता, कोई बता सकता है यहाँ पे समाज में? हाँ आप ही बता दीजिए प्रभु, क्योंकि मैं है ना मेरा अभी अध्ययन खाली भागवत और भागवत गीता में ही है, उसमें ही हमको फुर्सत नहीं मिलता है।
जानकारी के लिए मैंने पूछा।
हाँ
वर्णन है कि अभी जो चर्चा चल रही है ना विश्वामित्र जी की,
हाँ हाँ हाँ
ये गादी के पुत्र हैं।
ये किसके?
जो सत्यवती की माँ खीर खाई थी,
हाँ हाँ
उसे विश्वामित्र जी का जन्म हुआ था।
ओके ओके
नहीं चर्चा चल रही है।
हाँ हाँ बिल्कुल संबंधित है ये। हाँ,
उसे इसके हमें लिए मैंने जानकारी के लिए ऐसे जिज्ञासा किया।
कि भाई खीर से भी जन्म होता है, आशीर्वाद से भी जन्म
क्यों नहीं होता है? चारों भाइयों का जन्म तो खीर से ही हुआ है ना। भगवान का अवतार
तो भगवान के जो भी आशीर्वाद उस शक्ति है वो खीर में क्या थी?
अभी हा? चर्चा हो रही है ना, ऋचिक जी भी समर्थ है ना।
हाँ हाँ,
वो भी समर्थवान थे, उनमें वो भी तपस्वी थे।
बिल्कुल,
तो उनमें भी तो शक्ति थी। आप बिना आशीर्वाद का कुछ काम हो नहीं सकता, अभी चर्चा वही तो चल रही है ना।
वही चल रही है,
बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए।
बिल्कुल लेना चाहिए।
निष्कर्ष शिक्षा तो यही, आशीर्वाद लेना चाहिए। वो दोनों पुत्र चाहते थे, पत्नी भी चाहती थी और सास भी चाहती थी। तो ऋषि के आशीर्वाद से मतलब वो कार्य सफल हो गया। विश्वामित्र जी थे ऐसा वर्णन आता है। और ये बोले थे कि तुम तो खीर अदली बदल करके खा ली, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र होगा, मैं तुमने तो अनर्थ कर डाला। तो कहा कि नहीं, आप कृपा कीजिए कि हमारा अच्छा पुत्र उत्पन्न हो। तो कहे कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा वो तो बहुत उग्रवादी होगा।
अच्छा,
माने पुत्र का पुत्र पौत्र वही परशुराम जी हुए, और लेकिन तुम्हारा जो पति होगा वो, और जो वो ब्रह्मर्षि होगा। तो जब नग्नि जी तो ठीक हुए, लेकिन विश्वामित्र जी तो ब्रह्मर्षि बने ना, क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि हो गए। तो अभी जिज्ञासा होती, बहुत से लोग प्रश्न ऐसा करते हैं कि जो उनकी सास खीर खाई थी उससे किसका जन्म हुआ, मतलब कौन सा पुत्र था। तो उत्तर यही मिलता है, विश्वामित्र जी थे, जिनकी अभी हम लोग चर्चा कर।
धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। ठीक है, 9:10 हो गए हैं, प्रश्न यहाँ पे क्लास, और आप सबका धन्यवाद। हरिओम।